जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव बिहारी,
जय हम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिवराज काचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री श्री गुरु एंड गौरांग श्री प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय एक श्लोक संख्या 41। कल महाराज ने 41-40 लिया। ओके आई प्रिपेयर्ड फॉर 41, इट्स ओके। टेक्स्ट नंबर 44। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम्, यदराज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यतः। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयम्, यदराज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यतः। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् यदराज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यतः। शब्दार्थ अहो ओह बता, कितना आश्चर्य है यह। महत महान, पापम पाप कर्म, कर्तुम करने के लिए, व्यवसितः निश्चय किया है, वयम हमने, यत क्योंकि, राज्य सुख लोभेन राज्य सुख के लालच में आकर, हंतुम मारने के लिए, स्वजनम अपने संबंधियों को, उद्यतः तत्पर। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। ओह कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं, राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। तात्पर्य, स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। कृपया अनुवाद दोहराइए। ओह कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं, राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौड़ भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो जैसा कि पिछले कुछ श्लोकों से चर्चा चल रही है कि किस प्रकार से अर्जुन भगवान को जब बोलते हैं रथ मेरा लेकर चलिए विरोधी पक्ष के सामने, तो अर्जुन देखना चाहते थे कि कौन कौन युद्ध में आए हैं, लेकिन भगवान जानबूझ के अर्जुन का रथ उनके सामने खड़ा करते हैं जहां उन्हें मालूम है ये अर्जुन के वीक पॉइंट्स हैं। इनसे अर्जुन का बहुत अच्छा कनेक्शन है, जिनके गोदी में अर्जुन खेले हैं, जिनसे सब सीखे हैं। आचार्य के पास, भीष्म पितामह के पास जाके रथ को भगवान रोक देते हैं और अर्जुन वो सब देखते हैं और हमें सिखाने के लिए भगवान फिर अरेंजमेंट करते हैं और योग माया से अर्जुन को आवृत करते हैं और अर्जुन फिर ये सारे जो हम पिछले कुछ दिनों से सुन रहे हैं ये तर्क देना शुरू करते हैं। तो पिछले कुछ दिनों से जो हम अर्जुन की स्थिति देख रहे हैं, जो वो रो रहे हैं और धर्मशास्त्र के बल पे इतने सारे आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, इससे एक चीज़ दिखता है। प्रभुपाद जी कई बार तात्पर्य में, जैसे आज के तात्पर्य में भी लिख रहे हैं और पिछले भी 27 या 28वें श्लोक में प्रभुपाद जी लिखते हैं, 28वें श्लोक में लिखते हैं प्रभुपाद जी, जहाँ प्रभुपाद यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना कोट करते हैं कि ये भाव उसी व्यक्ति में आ सकते हैं जो जिसका हृदय करुणा से भरा पड़ा हो। और किस व्यक्ति का हृदय करुणा से भरा होता है? जो भगवान का भक्त है। भगवान का भक्त नहीं है तो करुणा उसके अंदर आएगी ही नहीं। प्रभुपाद जी पुरंजन व्याख्यान अभी हम पढ़ रहे थे तो उसमें प्रसंग आता, तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं जो नवधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम पाद सेवनम साख्यम आत्मनिवेदनम, तो प्रभुपाद जी कहते हैं वहाँ पर प्रसंग आता कि मलय ध्वज और वैदर्भी इनके 7 पुत्र हुए। तो तात्पर्य में प्रभुपाद समझाते हैं कि ये 7 पुत्र क्या हैं, नवधा भक्ति के पहले के 7 अंग। तो जो साख्यम और आत्मनिवेदनम है ये भक्ति के उच्च स्तर हैं, जो राग मार्ग पे हैं उनके लिए हैं ये, वो साख्यम और आत्मनिवेदनम कर सकते हैं, हम जैसे बद्धजीव नहीं कर सकते। तो हमारे लिए क्या है ये 7, श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, अर्चा विग्रह की सेवा करना। तो वहाँ प्रभुपाद समझाते हैं कि वास्तव में प्रचार तो एक कनिष्ठ अधिकारी कर ही नहीं सकता, कनिष्ठ अधिकारी कहाँ से प्रचार करेगा, प्रचार तो उत्तम अधिकारी करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सेवा में लगे हुए हैं, हमें जैसे आज्ञा दी जा रही है और हमारी शुद्धता के लिए, हम अपने शुद्धिकरण के लिए ये चर्चा कर रहे हैं। यहाँ बैठ के ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा प्रचारक हो गया हूँ और मैं लेक्चर दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हम कनिष्ठ अधिकारी हैं और बड़ों की आज्ञा का पालन करते हुए उनके मार्गदर्शन के अनुसार इसकी चर्चा करके हम अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं। तो ये हम जैसों को ये बताया गया ताकि हमारे अंदर ये करुणा का भाव हो। एक वरिष्ठ वैष्णव के प्रवचन में हमने सुना कि प्रचार है क्या, करुणा किसको कहते हैं, जब आप श्रवण करते 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 करते, नाम जप करते करते, सेवा करते करते, जब आपका हृदय भरता चला जाए भरता चला जाए, जैसे हमारे हृदय में गंदगी भरी पड़ी है, जब एक बर्तन में काफ़ी सारी गंदगी हो और उसके अंदर आप साफ पानी डालें तो क्या होगा, कुछ समय के लिए गंदगी बाहर आएगी। आपने एक भर दिया साफ पानी, फिर भी देखेंगे पानी गंदा है, फिर और साफ पानी डालते हैं अभी भी गंदा है, बार बार डालते डालते रहने से क्या होता है, वो गंदगी हट जाती है और फिर वो पूरा साफ भर जाता है। तो जब साधना करते करते हृदय इतना भर जाता है भक्ति से कि अब ओवरफ्लो हो रहा है, तो वो ओवरफ्लो प्रचार है। तो हम सोच सकते हैं, तभी साधक बार बार प्रश्न पूछते हैं कि प्रचार में, प्रचार के लिए क्या करें, कैसे रुचि बढ़ाएं, नाम जप में कैसे रुचि बढ़े। जैसे ही उसको प्रचार के बारे में सोचता रहेगा, नाम में रुचि अपने आप बढ़ती है। तो ये वो कर सकते हैं जिनके अंदर करुणा भरी पड़ी है, ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और हम उनका अनुगमन करने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, प्रभुपाद जी कहते थे यू जस्ट गो क्रैम माई पर्पस एंड वॉमिट, मेरे पर्पस याद कर लो और बोल दो जाके। तो ये हम प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम भी अपने हृदय में एक दिन ये करुणा का भाव विकसित कर पाएंगे और देख पाएंगे, जो अर्जुन यहाँ पे एक बद्ध जीव की तरह दिखा रहे हैं कि अपने सगे माई भाई बाप माँ इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन एक भक्त जिसका हृदय करुणा से भरा पड़ा है वो क्या देखता है। गीता में भगवान क्या बताते हैं, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाक च पंडित समदर्शिना। तो जो भक्त है वो पंडित है, वास्तविक पंडित एक भक्त है, तो सबको समदर्शी देखता है। वो नहीं देखता ये मेरी माँ है और ये जो है पड़ोसी आंटी है, वो दोनों को जीवात्मा देख रहा है। तो अपना कर्तव्य निर्वाह करते हुए भक्ति दोनों को देगा और प्रयास करेगा जितने ज्यादा लोगों को दे सकें उतना ज्यादा। तो उस स्थिति पे आने के लिए हमको प्रयास करना है। लेकिन ये सब समाज में, प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि विश्व में ऐसे अनेक उदाहरण है कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए व्यक्ति अपने सगे परिजनों का भी वध कर सकता है। ये समाज आज ऐसा क्यों, आज हम देख रहे हैं समाज में ऐसा है, आए दिन न्यूज में हम सुनते हैं प्रेमी ने प्रेमिका के साथ मिलके की पति की हत्या, इस बेटे ने जायदाद के लिए पिताजी को घर से निकाल दिया, और बहुत सारे नेगेटिव न्यूज आए दिन आते रहते हैं। ये सब क्यों है, कहाँ से आ रहा है ये सब, जो पिछले श्लोकों में हमने सुना। अर्जुन उदाहरण देते हैं क्यों, लुप्त पिंडोदक क्रिया शंकरो नरका एव लुप्त पिंडोदक क्रिया। ये वर्ण संकर जब उत्पन्न होंगे तो समाज में ऐसी उत्पात मचेगा, और वर्ण संकर उत्पन्न कहाँ से होते हैं समाज में। वैदिक सभ्यता पूरी तरह से इस तरह से डिजाइन थी, वैदिक सभ्यता पूरी इस तरह से डिजाइन की गई है कि समाज में जो पॉपुलेशन हो वो अच्छी हो, सोसाइटी इज फिल्ड विद गुड पॉपुलेशन। कैसे, तो जब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भगवान ने बनाए हैं ये उनके गुण के अनुसार बनाए, जब गुण का मेल होता, जैसे कल महाराज जी समझा रहे थे गुण मैच करेगा तब तो जो संतान होगी वो भी एक वैसा ही आएगा, नहीं तो भारतीय लड़का और दूसरे देश की लड़की और संतान क्या होगा तीसरे देश का, तो वो क्या देगा, संस्कार कहाँ मिलेंगे उसको। तो इसीलिए ये कोई कास्ट बेस्ड डिवीजन नहीं है, ये कोई जन्म के आधार पे नहीं है कि आप तो समाज में विभाजन की बात कर रहे हैं, ये विभाजन नेचुरल है। प्रभुपाद जी कहते हैं चारों वर्ण हर जगह आपको मिलेंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये भगवान का बनाया हुआ है तो हर जगह मिलेगा आपको। तो अगर साइकोफिजिकल नेचर मैच नहीं करता और ऐसे ही लाइफ एक साथ जीने के लिए लड़का लड़की साथ में आते हैं तो क्या होता है, सो मैनी एक्सपेक्टेशंस जो फुलफिल नहीं होती और फिर फ्रस्ट्रेशन, दैट्स व्हाई लव एट फर्स्ट साइट डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट। और उसमें बिकॉज जो संस्कार की बात की जाती है तो सबसे पहला संस्कार जो एक व्यक्ति के जीवन में होता है वो क्या है, गर्भाधान संस्कार। विवाह होता है उससे पहले, विवाह के बाद ही गर्भाधान संस्कार होता है, विवाह को संस्कार कहा गया है, तो एक संस्कार है, उसके बाद गर्भाधान संस्कार। तो ऐसी पुण्य आत्माएं, गर्भाधान संस्कार बेसिकली है क्या, भगवान से प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने के बाद ऐसे आत्मा की कामना करते हैं जो आके वंश की ख्याति बढ़ाए। प्रभुपाद जी पुरंजन व्याख्यान में लिखते हैं कि राजा मलयध्वज यानी जो महाभागवत एक प्रसंग चल रहा है, तो वो क्योंकि महाभागवत हैं भक्त हैं तो उन्होंने जो संतानों की उत्पत्ति की वो सारे संतान और कई संतानों की उत्पत्ति करते गए, और इन्होंने पूरे के पूरे पूरे एक मन्वंतर के लिए सबकी रक्षा की, समाज की रक्षा की। तो जब ऐसी आत्माएं आती हैं समाज में फिर वो शासन करने के लिए नियम पालन करना सीखती हैं, नहीं तो बचपन से ही आजकल के बच्चे, उनका नेचुरल अट्रैक्शन रहता है ऐसे कार्यों के लिए जो कार्य नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार हैं। हालांकि भक्ति इन सबसे ऊपर है, भक्ति के लिए ज़रूरी नहीं है ये, लेकिन फिर भी पूर्व जन्म के संस्कार बहुत मैटर करते हैं। आप में से ही हम सबके घरों का उदाहरण ले लीजिए, हमारे अपने भाई बहन हैं तो हम 16 माला कर रहे हैं, हमारे घर में कोई बहुत सुनता है हमारी, कोई बिल्कुल नहीं सुनता है कि नहीं, उदाहरण है कहीं? क्योंकि अपने अपने पूर्व संस्कार लेकर आए हैं और वो पूर्व संस्कार हमको मदद करते हैं। तो ये तभी संभव है जब समाज में वर्णाश्रम की व्यवस्था हो, वर्णाश्रम की व्यवस्था हो और स्त्री पुरुष दोनों को बराबर ट्रेनिंग मिले। तो अभी की जो शिक्षा पद्धति है वो क्या ट्रेन करती है? सिर्फ और सिर्फ इंद्रिय भोग करने के लिए और एक दूसरे का शोषण करने के लिए। ना स्त्रियों को ट्रेनिंग मिलता कि किस तरह से सती बनना है और पति की सेवा करनी है, ना पति को ट्रेनिंग, मतलब लड़कों को ट्रेनिंग मिलती है कि कैसे परिवार का निर्वाह करना है, शास्त्रों के अनुसार जीवन जीना है और भोग दृष्टि नहीं रखनी है। ये परस्पर चलता है। नहीं तो हम बात करना जब शुरू करते हैं कि माताओं के ये गुण होने चाहिए, उनको सती का ट्रेनिंग मिलना चाहिए, तो तुरंत प्रभु जी सब कुछ हम ही करें, आप लोग क्या करेंगे? तो नहीं, दोनों के लिए, शास्त्रों में दोनों के लिए ट्रेनिंग है। तो साइकोफिजिकल नेचर के अनुसार ट्रेनिंग दी गई है। पुरुषों को बाहर भेजा जाता था, ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो, किसी का भी पुत्र हो, गुरुकुल जाएगा। गुरुकुल जाएगा कहाँ रहे? गुरुकुल जाने का मतलब क्या है? एक तो शिक्षा उपार्जन और दूसरा परिवार से दूर, ब्रह्मचर्य का अभ्यास। क्यों परिवार से दूर भेजा जाता है बच्चे को? आजकल सुबह सुबह बच्चे निकलते हैं, आजकल का एजुकेशन सिस्टम, सुबह सुबह मम्मी पूरा तैयार करेगी उसको, फिर वो मम्मी उसको गेट तक छोड़ने जाएगी, स्कूल तक भी छोड़ने जाती है, फिर बाय मम्मी, और फिर मम्मी को देखते देखते क्लास में घुसता है, फिर माता जी को शांति आता है, मेरा बच्चा पहुँच गया अंदर। फिर उसके बाद छुट्टी होते ही घंटी बजानी, गेट पर मम्मी खड़ी है, फिर मम्मी का हाथ पकड़ के चल देगा घर में। तो दिन भर स्कूल में भी सोचता रहता कब घर जाऊंगा, घंटी बजेगी। तो आसक्त है बहुत ज़्यादा घर से, और वहीं पे उल्टा हो गया, लड़के ज़्यादा आसक्त हो गए और विपरीत हो गया है। लेकिन गुरुकुल में जाने से वो बच्चा अनासक्त रहता था घर से, माता पिता को देख नहीं रहा है, 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य का अभ्यास कर रहा है, उसके लिए गुरुदेव उसके पिताजी हैं और गुरु माँ उसकी माता है, तो अनासक्त है घर से क्योंकि बचपन उसका बीता नहीं। सबसे ज़्यादा आप देखिए, आज हम 18-20 साल, इतने साल होने के बाद भी हम भक्ति में आते हैं तो क्या क्या यादें हमको सताती हैं एक साधक होने के नाते? वो क्या दिन थे बचपन के, दोस्तों के साथ खेले घूमते थे, वो यादें आती हैं ना, वो डिस्टर्ब करती हैं हमको थोड़ा साधना में। यहाँ थोड़ा सा डिफिकल्टी अगर हम फेस करते हैं तो इमीडिएटली हमारे कॉलेज के दिन, स्कूल के दिन वो याद आते हैं क्योंकि आसक्ति बहुत ज़्यादा हो गई उसमें। अगर गुरुकुल में यही बच्चा होता तो कोई समस्या नहीं होती। तो फिर वो जब अनासक्त रहता है, एक पुरुष के लिए अच्छा है अनासक्त होना और वहीं एक स्त्री के लिए आसक्त होना अच्छा है, आज विपरीत है। और वहीं पे घर पे माताओं को शिक्षा दी जाती थी। तो एजुकेशन मतलब 64 कला, एजुकेशन मतलब 64 कलाएं सीखना। जैसे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सांदीपनि मुनि के आश्रम में 64 कला सीखे 64 दिन में, ये एजुकेशन है। आप कृष्ण बुक में पढ़ सकते हैं भगवान ने क्या क्या सीखा। ये नट बोल्ट बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, नट बोल्ट बना के हम देख ही रहे हैं क्या कर लिया हमने। प्रभुपाद कहते थे ग्रो फूड, यू विल ईट नट एंड बोल्ट्स, ग्रो फूड, वाई आर यू नॉट ग्रोइंग फूड? और आज पूरा सोसाइटी इस पर चिंतित है कि हमको फूड अच्छा नहीं मिल रहा, लैंड्स आर वेकेंट। तो बहुत अच्छा इस्कॉन का इनिशिएटिव चल रहा है, फार्म विलेजेस, इको फार्म, सस्टेनेबल फार्मिंग, ये कंसेप्ट है। लेकिन सस्टेनेबिलिटी हमने आज तक पढ़ा सामाजिक विज्ञान में, सस्टेनेबिलिटी आएगा कैसे ये किसी को पता नहीं। सो जब तक टेक्नोलॉजी अननेसेसरीली जो डेवलप हो रही है, टेक्नोलॉजी क्या करती है? सिर्फ और सिर्फ काम को बढ़ावा देती है, काम को बढ़ावा देती है और भोग करने की इच्छाओं को जागृत करती है, जिसके कारण हम यहाँ फंसे हैं उसी को बढ़ाती है। और एक टेक्नोलॉजी 10 नए प्रॉब्लम को जन्म देती है, वो हम देख ही रहे हैं, उसके ऊपर तो बहुत बड़ा सेमिनार हो जाए तो भी कम है। तो जब ट्रेनिंग मिलती थी ऐसा, क्योंकि पुरुष शरीर जो है वो ब्रह्मचर्य के लिए अनुकूल है, ब्रह्मचारी रह सकता है पूरा जीवन, कोई समस्या नहीं है। हाँ, किसी को ज़रूरत है तो गृहस्थ आश्रम में जा सकता है। और वहीं पे जो माताएं हैं उनको शिक्षा मिलती थी कि कैसे सती धर्म का पालन करना है। तो हम शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण हैं, प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में कई उदाहरण देते हैं, हमारे भागवतम है माता कुंती का, माता गांधारी का, हम अलग शास्त्रों से प्रभुपाद जी कोट करते हैं, नल दमयंती बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है, हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी का क्या नाम है, सत्यवान सावित्री, ऐसे हमारे वैदिक शास्त्रों में कई ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पे एक सती स्त्री की शक्ति दिखती है, उसका सतीत्व जो है। हम वैसे तो माता तुलसी महारानी तो आध्यात्मिक जगत से आई हैं, लेकिन उस प्रसंग में भी हम देखते हैं जब इस धरती पे लीला की माता तुलसी मैया ने, और उनका विवाह किनसे हुआ, शंखचूड़ से, शंखचूड़ नाम के असुर से उनका विवाह हुआ। तो उनको वरदान मिला हुआ था क्या, कि जब तक पत्नी जो है वो सती है कोई नहीं मार सकता। स्वयं शिव जी अपना पाशुपत अस्त्र चला दिए शंखचूड़ के ऊपर, लेकिन वध नहीं हुआ, वध नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वृंदा देवी की सतीत्व जो है उनकी रक्षा कर रही है। तो ये उनका धरोहर है, ये उनका आभूषण है। जब इस आभूषण को त्याग दिया जाता है समाज में, जब व्यवस्था ऐसी हो जाती है, शिक्षा व्यवस्था ऐसी होती है कि जहाँ पे पुरुष समाज जो है वो भोग दृष्टि से देखे हर चीज़ को, और स्त्री समाज जो है वो अपना सतीत्व बना के न रखे, तो ये दोनों गड़बड़ हो जाता है। उससे जो संतान उत्पत्ति होती है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों का हरास करेगा और शोषण करेगा, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेगा, उसमें विजन हो ही नहीं सकता, विजनरी बन ही नहीं सकता वो व्यक्ति कि वो वेलफेयर के लिए सोचे, क्योंकि बीज ही गलत है, तो वो कैसे आएगा? वो आएगा जब वापस ये वर्ण व्यवस्था स्थापित हो। तो आज के समय पे वर्ण व्यवस्था स्थापित करना तो बहुत ही मुश्किल है। अब तो हम वापस नहीं जा सकते कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऐसे हो अलग अलग। तो इसीलिए हमारे आचार्यों ने हमें क्या व्यवस्था दी है, दैवी वर्णाश्रम, कि आप जिस भी व्यवसाय में हो, स्थाने स्थितः, ब्रह्मा जी कहते हैं जिस स्थान में हैं वहीं पर स्थित हो जाइए। श्रुतिगताम तनु वांग मनोभीर, तन वचन और मन, इन तीनों को भगवान में लगा दीजिए। हाँ, कुछ कार्य ज़रूर हैं, ऐसा नहीं कि मॉडर्निटी के नाम पर हम कुछ भी करते जाएं, कुछ कार्य ज़रूर हैं जो शास्त्रों के अनुसार अनुकूल होना चाहिए, जो भक्ति में सपोर्ट करें। जैसे बिजनेस कर रहे हैं, हमारे कई सारे भक्त बिजनेस करते हैं, तो हर्बल प्रोडक्ट्स का बिजनेस कर रहे हैं, कुछ काव प्रोडक्ट्स का बिजनेस कर रहे हैं, किन्हीं का कपड़ों का बिजनेस है, तो अलग अलग प्रकार के। हमारे कुछ भक्त हैं जो पहले ग्रॉसरी शॉप चलाते थे जिसमें हर तरह के आइटम्स होते थे, वेज नॉन वेज, लेकिन डिवोशनल सर्विस में आने के बाद दे स्टॉप सेलिंग नॉन वेज आइटम्स, क्योंकि वो भक्ति के अनुकूल नहीं है, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो ये थोड़ा थोड़ा तो देखना पड़ेगा, और उसके साथ अपना दिनचर्या ऐसा बनाए कि आध्यात्मिक उससे शुरू हो और भगवान का स्मरण कीर्तन कर सके, प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ सकें और प्रयास कर सके, अभ्यास कर सके परिवार से अनासक्त होने का। अनासक्त होने का मतलब ये नहीं कि जल्दी से जल्दी भागो, लेकिन सबको इस दृष्टि से देखना है कि ये सब भगवान के अंश हैं, मेरे भोग के लिए नहीं है। यानी मेरा परिवार मेरे भोग के लिए नहीं है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मेरी जिम्मेदारी है, तो मुझे इनको भगवान की भक्ति में लगाना है। तो ये दृष्टि कब आएगी? जब उसको वो ट्रेनिंग मिलेगी। नहीं तो सारा संसार वृद्धावस्था तक भी वो आसक्ति जाती नहीं। प्रभुपाद जी बताते हैं ना वो कहानी अकबर और बीरबल की, बीरबल से पूछते हैं अकबर की ये काम वासना कब जाती है, बोले नहीं जाती है, मृत्यु तक भी नहीं जाती है, ये कभी भी आ सकती है। तो अकबर पूछते हैं ऐसा थोड़ी होता है, बुढ़ापे में तो शरीर जर्जर हो जाता है, तब कैसे सताएगा? बोले आपको कुछ दिनों बाद बताता हूँ। तो कुछ दिनों बाद बीरबल उनको लेके गए, बोले जल्दी आइए, नगर में एक व्यक्ति जो शरीर छोड़ रहा है, बूढ़ा व्यक्ति, तो चलिए साथ में कुछ दिखाना है, और अपनी जवान बेटी को लेकर चलिए। तो जब अपनी जवान बेटी को अकबर लेके जाते, बोला बस ध्यान से आप कमरे में घुसते ही देखिएगा उसकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है। तो अकबर घुसे, बुढ़ापे में आता ना, कफवात पित्त ही कंठावरोधन विधौ, कंठ अवरुद्ध हो जाता है कफवात पित्त से, तो बता कौन आया, तो बादशाह है, कोई रिएक्शन नहीं, बादशाह है, अब काय का बादशाह, मैं खुद शरीर छोड़ रहा हूँ। लेकिन दूसरे क्षण छन छन आवाज आई कान में, और तुरंत आंखें खुल गई, मृत्यु शैया पे लेटा है लेकिन इंद्रियां काम कर गई और दृष्टि पड़ गई, अकबर समझ गए ये नहीं जाएगा। इसलिए यामुनाचार्य क्या प्रार्थना करते हैं, यदवधि मम चेतः कृष्ण पदारविंदे नव नवरस धामानि उद्यतम रंतुमासे तद अवधि बतनारि संगमे स्मर्यमाने भवति मुख विकार सुष्ठु थु निष्ठीवनम च। सो यामुनाचार्य तो बहुत बड़े वैष्णव हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो शायद हमको सिखाने के लिए कह रहे हैं। यामुनाचार्य राजा थे पहले, बाद में संन्यास लिया उन्होंने, तो यामुनाचार्य हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो ऐसा सोचते होंगे, लेकिन क्या बता रहे हैं इससे कि आप भक्ति में स्थित हैं और भगवान के नए नए रस का लीलाओं का आस्वादन कर रहे हैं तो भी ये इच्छा आ सकती है। तद अवधिवत नारी संगमे, नारी संगम का स्मरण होता है तो मैं थूक देता हूँ। फर्क बस इतना है कि शुद्ध भक्त थूक देते हैं अगर विचार आया भी, क्योंकि विचार कहाँ से उत्पन्न होता है, मन से। मन किसका है, मन किसका है, मेरा मन हमारा है, मन किसका है, मन भगवान का है। भूमि रापन अलव आयु खम मनोबुद्धि देवचा, तो ये मन भगवान की प्रकृति का हिस्सा है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि ये मन ही माया है, क्योंकि माया का एजेंट है ये। माया कैसे कार्य करती है, मन के थ्रू कार्य करती है। माया नहीं आएगी आपके सामने कुछ कर, मन में आपकी इच्छाएं दे देगी, और बुद्धि मार्गदर्शित अगर नहीं है तो मन के भाव में जाएंगे, उसको पूरा करने के लिए पूरा बुद्धि लगा देंगे, इसको कैसे फुलफिल करना, तो ये मन ही माया है। जब भगवान की भक्ति में नहीं लगाए तो महामाया है, भगवान की भक्ति में लगाए तो योग माया है। तो ये मन विचार दे सकता है, भटका सकता है, जब तक प्रेम के स्थिति पे नहीं पहुंचा भक्त तब तक मन भटकाएगा, लेकिन उस पर एक्ट नहीं करना। वो तभी संभव है जब शास्त्रों की वाणी हमें पता हो। जय श्री श्री राधा श्री भगवान की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो ये तब संभव है जब भगवान का साधु भक्त बने, जैसे अर्जुन भगवान के साधु भक्त हैं, तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं। तो साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक हैं, वो सारे धर्मशास्त्रों को जानते हैं। तो शास्त्रों को पढ़ना और इसकी चर्चा करना, इसका अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कलयुग में वैसी बुद्धि बहुत कमज़ोर है। ये देखिए, ये वो समय है जब 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन और भगवान दोनों ही बाहरी रूप से क्या हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण बहुत ऊंचा पद है एक्चुअली, हम लोग बहुत आजकल बहुत मामूली लेते हैं ब्राह्मण, हम ब्राह्मण परिवार के हैं। क्यों, हमारे नाम के पीछे शर्मा जी, मिश्रा जी, झा जी लगा हुआ, इसीलिए हम ब्राह्मण हैं, हम जनेऊ भी पहनते हैं, है ना। मैं तो इस्कॉन में आके देखा कि जनेऊ के ऊपर गायत्री करनी होती है 3 बार, क्योंकि हमारा 10वीं क्लास में थे हम, तब हमारा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था, मेरा मेरे भाइयों का, तो जनेऊ पहन रखा था। करना क्या, इसका कुछ पता नहीं था, तो यहाँ आके पता पड़ा कि यहाँ ऐसे होता है, ब्राह्मण दीक्षा ऐसे होता है, फिर ब्राह्मण दीक्षा होती है, फिर गायत्री उसके ऊपर उच्चारण किया जाता है। तो मैंने कहा गायत्री मंत्र वही वाला, बोले नहीं 7 प्रकार की गायत्री है। तो पता पड़ा कि गायत्री भी इतने विभिन्न प्रकार के, जितने भगवान के रूप हैं उतनी प्रकार की गायत्री है। और आप भगवान के जिस रूप की उपासना कर रहे हैं उस गायत्री का उच्चारण होता है। गायत्री भगवान की अंतरंगा शक्ति है। आप नरसिंह भगवान की पूजा करें तो नरसिंह गायत्री है, हयग्रीव भगवान की पूजा करें तो हयग्रीव गायत्री है, गौर निताय की भी गौर गायत्री है, भगवान कृष्ण के लिए काम गायत्री है। तो ऐसे भगवान के जितने रूप उतने गायत्री मंत्र। तो यहाँ के तो पता पड़ा कि गायत्री मंत्र इतने प्रकार के हैं, और जो बाहर बजता रहता है अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में वो तो सिर्फ निर्विशेष ब्रह्म तक लेके जाएगा, वो भी गाना नहीं चाहिए। गायत्री मंत्र इट हैज़ टू बी चैंटेड इन द माइंड, गायत्री मंत्र सुनाई नहीं देना चाहिए किसी को, मन में जप होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें कहाँ बताई जाती हैं, बाहर के ब्राह्मणों को पकड़ लो, जो सो कॉल्ड ब्राह्मण है, बताइए आप ब्राह्मण क्यों हैं? क्यों हैं? बस पैदा हो गए, पिताजी ने नाम रखा है, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, चार वेदों के नाम भी नहीं बताएंगे, तो ये ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण बहुत ऊंचा है। ब्राह्मण का लेवल क्या है? गीता में क्या बताते हैं भगवान? सत्यम शौचम क्षमा दया। सत्य मतलब सत्य, सत्य की परिभाषा देखेंगे हम शास्त्रों में तो पता है, आए दिन झूठ बोलते हैं हम, क्षण क्षण झूठ बोलते हैं। सत्य का क्या, द्वापर युग तक क्या प्रैक्टिस किया जाता था सत्य का? कई बार हम महाभारत में जो प्रसंग देखते हैं, अरे युधिष्ठिर महाराज यार इतना क्या, थोड़ा सा बोल देते, नहीं समझ पाते ना हम। कलयुग में बहुत ईजी है ना, फट से झूठ बोल दिया। मंगल आरती में क्यों नहीं आया? ओ प्रभु जी पेट में दर्द हो रहा था, फट से झूठ। तुलसी माला पहन रखी है, मंदिर में है, भगवान के सामने फट से झूठ। चलो भगवान माफ कर देंगे, ठीक है, कलयुग में उतना नहीं, लेकिन हमारी आदत बन गई है। तो हम इमेजिन भी नहीं कर पाते कि पहले के युगों में वचन का कितना वैल्यू होता था। जो बोल दिया वो बोल दिया, वो झूठा नहीं होगा, इसीलिए उसको वाणी, वाणी की सिद्धि है, वो वाणी की सिद्धि है। जो व्यक्ति इसका अभ्यास करता है उसकी वाणी इतनी सिद्ध हो जाती है, जो बोलेगा वो होगा। आजकल नहीं है वो ब्राह्मण, इसीलिए आशीर्वाद देते हैं तो भी फलित नहीं होता। आते हैं साधुओं के पास, नौकरी नहीं मिल रही है, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, ब्राह्मण का पैर छुएगा, सब आशीर्वाद ले लेगा, फिर भी कुछ नहीं मिलता, क्योंकि ब्राह्मण बचे कहाँ पे? सत्यम शौचम शुद्धता सफाई। मैं उस दिन प्रश्न पूछा प्रभु जी से, गोकुलेश्वर प्रभु जी से, कि ये रूल्स रेगुलेशन है तो भक्ति में आने का मतलब ये तो नहीं है कि हमको लाइसेंस मिल गया है कि हम नियमों को, इतना हम नहीं ध्यान देते भक्ति में, लेकिन फिर भी जो नियम हमको पता पड़ गया तो फॉलो करना चाहिए, तो कितने हद तक फॉलो करें कितने हद तक नहीं करें? तो प्रभु जी ने सिंपल आंसर दिया, प्रभुपाद ने जितना दिया उतना फॉलो करो, ज़्यादा शास्त्रों को देखोगे तो बाथरूम में ही बैठे रहोगे, क्योंकि सफाई का स्टैंडर्ड अगर देखोगे शास्त्रों के हिसाब से तो दिन भर बाथरूम में ही बैठना पड़ेगा। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, शिष्य हैं इस ग्रेस आत्म तत्व प्रभु, तो वो एक प्रसंग बताते हैं कि जो अभी पेजावर मठ के स्वामी, हिज होलीनेस विश्वेश्वर तीर्थ स्वामी, सीनियर मोस्ट सन्यासी ऑफ ऑल फोर संप्रदाय, अभी कुछ महीनों पहले समाधि लिए उन्होंने, तो उनसे मिलने गए थे वो, उनसे मिलने गए, और हिज होलीनेस विश्वेश्वर तीर्थ स्वामी प्रभुपाद का बहुत तारीफ करते थे। प्रभुपाद जी ने उनको पत्र भी लिखा था प्रचार में मदद करने के लिए, तो बहुत कुछ उन्होंने इसको उनका और भक्तों का, और विशेषकर जो प्रचार में लगे हुए उनका बहुत गुणगान किया उन्होंने। तो विश्वेश्वर तीर्थ स्वामी, उनके पास मध्वाचार्य जी का दिया हुआ, जो मध्वाचार्य जी को व्यास देव ने नरसिंह शालिग्राम दिए, उग्र नरसिंह शालिग्राम, वो शालिग्राम शिला पास होते होते उनके पास थी, जिसकी वो पूजा करते थे। विशेष प्रकार का एक बॉक्स है जिसको एंशियंट लॉक सिस्टम है, उसमें जिसको खोलते थे उग्र नरसिंह शिला, वो सिर्फ उसकी पूजा करते तो फट से बंद कर देते थे। तो बताते थे कि 21 प्रकार के अलग अलग आचमन होते हैं उसकी पूजा के लिए, और दिन में 9 बार स्नान करते हैं उनका पूजा करने के लिए, 9 बार स्नान। तो जो व्यक्ति स्टैंडर्ड सुनेंगे तो हम घबरा जाएंगे, है ना। तो प्रभुपाद बोले कम से कम 2 बार नहा लो यार, 2 नहीं तो कम से कम 1 बार नहा लो। जब देखते थे सामने गीता क्लास देते थे प्रभुपाद, और प्रभुपाद का हमेशा गर्दन ऐसे रहता था, प्रभुपाद चलते थे तो ऐसे चलते थे। तो एक बार एक ने पूछा, स्वामी जी आप हमेशा ऐसे क्यों चलते हैं? बोलते हैं नीचे नरक है इसीलिए मैं ऊपर देखता रहता हूँ, गोलोक, नीचे क्या देखूंगा, नीचे नरक है। तो प्रभुपाद, जब प्रभुपाद जी का देखे, मैं भगवद गीता में जब फोटो देखा था पहली बार प्रभुपाद का, पता नहीं इसमें है कि नहीं, नहीं नहीं अभी जो नई वाली है उसमें देखे, प्रभुपाद ऐसे बैठे, ही इज एब्जॉर्ब। तो जब हमने पहली बार देखा तो हमें लगा कि अरे ये कौन से महाराज हैं, को समझ ही नहीं आ रहा था कौन से स्वामी जी हैं। जनरली साधु मतलब जो हमने देखा था, बड़ी बड़ी दाढ़ी, 3 स्टार, है ना, यहाँ ये कौन है, एब्जॉर्ब्ड है ना उसमें है ना। सो हमेशा प्रभुपाद जो है एकदम ध्यान में चले जाते थे। और कई बार प्रभुपाद जब वेस्टर्न वर्ल्ड में जब प्रभुपाद जब स्पेशली लेक्चर देना शुरू किया और जब प्रभुपाद कीर्तन करते करते ऐसे आँख खोलते थे, देखते थे हम जैसे बदजी वहाँ पे क्या हालत है इन सबकी। एक बार हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी ने स्वप्न देखा था जब वो आईसीयू में थे और प्रभुपाद यहाँ से गए थे उनको मिलने के लिए। ये तमाल कृष्ण महाराज खुद नरेट करते हैं इसको कि उन्होंने स्वप्न क्या देखा कि प्रभुपाद जी खड़े हैं प्लैनेट के बाहर, पीछे प्लैनेट है, प्रभुपाद खड़े हैं और सारे आचार्य खड़े हैं प्रभुपाद के सामने। और जैसे हम लोग कॉलेज में जाते हैं ना एमएमसी करने और फिर शाम को आके प्रीचिंग रिपोर्ट सबमिट करते हैं अपने कोऑर्डिनेटर को, प्रभु जी ये प्रीचिंग रिपोर्ट, इतने लड़के आए, इतने देर का सेशन हुआ, इतना चैंटिंग कराया, तो सारे आचार्य खड़े हैं और प्रभुपाद जी से प्रीचिंग रिपोर्ट मांग रहे हैं, इस प्लैनेट का प्रीचिंग रिपोर्ट दिखाइए। तो प्रभुपाद जी प्रीचिंग रिपोर्ट दे रहे हैं, पैथेटिक कंडीशन है, यूजलेस, कोई गुण नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। तो सभी आचार्य ऐसे देख रहे हैं प्रभुपाद, प्रभुपाद बोले लेकिन एक गुण है क्या, मेरे प्रति समर्पण है इनका। तो प्रभुपाद जो प्रचार कर रहे थे, जितने भी हमारे इस्कॉन के जो पहले के जो भक्त हैं जो आज तक इस संस्था को चला रहे हैं, आप देखिए उनका अगर पहले का जीवन देखेंगे तो हमारे से तो अच्छा नहीं था, हम तो फिर भी भारत में जन्मे हैं, संस्कार अच्छा मिला है, लेकिन जैसा बैकग्राउंड से वो आए और जिस प्रकार की सेवा उन्होंने की हम कल्पना भी नहीं कर पा रहे, आज भी हम वो प्रयास वो आ नहीं रहा है, जिस प्रकार की सेवाएं की है उन्होंने वो कहाँ से संभव हुआ है। तो उनका अटूट श्रद्धा था, अटूट समर्पण था प्रभुपाद के प्रति। कहते कृष्ण को हमने नहीं देखा, हमने तो प्रभुपाद को देखा है। तो प्रभुपाद के प्रति इतना समर्पण था उनका। तो प्रभुपाद जी बोले बस इनका यही एक क्वालिफिकेशन है, मेरे प्रति समर्पण। तो फिर समस्त आचार्य बोले ठीक है जाइए प्रचार कंटिन्यू, एंड प्रभुपाद केम बैक। तो तमाल कृष्ण महाराज जब प्रभुपाद को यह बताए तो प्रभुपाद हाँ ठीक ठीक। कई बार ऐसे कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहाँ पर प्रभुपाद के जो निकट के एकदम जो प्रभुपाद के एकदम निकट रह के सेवा कर रहे हैं वो देख लेते थे, प्रभुपाद की कृपा से उनको कई बार ऐसी चीज़ों का दर्शन हो जाता था जो पता पड़ जाता था उनको कि ये व्यक्ति का ना पूर्व जन्म है ना अगला जन्म है, ये आए हैं गोलोक धाम से। डायरेक्टली प्रभुपाद ने कभी बोला नहीं, एक बार यहीं बीच पे प्रभुपाद चल रहे थे, वॉक चल रहे और शायद गुरुदास प्रभु या किन्होंने पूछा प्रभुपाद जी व्हाट इज योर स्वरूप इन गोलोक का, और प्रभुपाद तुरंत मुड़े और लाठी लेके दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। प्रभुपाद सीरियस हो गए, तो इनको लगा शायद प्रभुपाद ह्यूमिलिटी के कारण ऐसे, ऑब्वियसली हम्बल हैं तो ह्यूमिलिटी के कारण मना कर रहे हैं, फिर पूछ दिया एंड दिस टाइम ही लिटरली बिकेम एंग्री और पूरा डंडा पेट में लेके घोंप दिया उनके, आई टोल्ड यू दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, और वो पूरा मॉर्निंग ऑफ साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस, बस समुद्र के लहरों की आवाज़ है और पैरों की आवाज़ है। तो प्रभुपाद कभी बताते नहीं थे, लेकिन अब शुद्ध भक्त सूर्य कितना भी प्रयास करेगा अपना प्रकाश छुपा सकता है क्या? तो शुद्ध भक्त हैं तो साथ में जो सेवा करें उनको दिख ही जाता है ना उनका, तो दिख जाता था। तो इनके प्रति जो समर्पण का भाव है अगर हमारा विकसित हो जाए तो ये सारे गुण विकसित हो जाएंगे जो हमको आगे ले जाएंगे। तो हमारे पास और कोई मार्ग नहीं है, हमारे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, जप में हमें नींद आती है, भागवत में रुचि नहीं है, सेवा में मन नहीं लगता है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, प्रजल्प करने में बहुत इच्छा होती है, तो कहाँ से होगा? तो ये तभी संभव है जब बस जो प्रभुपाद ने दे दिया उसको फॉलो करें, जो प्रभुपाद ने बता दिया सब कुछ इसमें दिया हुआ है, एक साधक को क्या फॉलो करना है क्या नहीं फॉलो करना है। तो इसीलिए प्रभुपाद कहते थे कि मैं क्या करूं, समाज ही ऐसा है। प्रभुपाद ने कभी भेदभाव नहीं किया, वेरी प्रैक्टिकल, इट वॉज वेरी प्रैक्टिकल, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो दोनों को बराबर मौके दिए प्रभुपाद ने, इक्वली ट्रीट किया प्रभुपाद ने भक्ति में। हालांकि यहाँ अर्जुन जितने भी उदाहरण दे रहे हैं जितनी भी बातें कर रहे हैं ये सब इसका मेन जो फाउंडेशन है वो क्या है कि प्रोजेनी, गुड प्रोजेनी। गुड प्रोजेनी कब आती है? जब पत्नी जो है वो सती हो और पति जो है वो भगवान का भक्त हो या वर्णाश्रम के वर्ण के व्यवस्था के अनुसार अपने धर्म का पालन कर रहा है तो अच्छी व्यवस्था आएगी। लेकिन अब तो नहीं है समाज में, प्रभुपाद बताते हैं कि जनरली जो स्त्रियां हैं वो कभी भी आज़ादी नहीं देनी चाहिए उनको, जनरली दे आर दे हैव लेस सेंस कंट्रोल देन मैन. भक्ति में आने के बाद अलग है. भक्त भक्त हैं अगर तो कोई समस्या नहीं, भक्तों का अलग लेवल है. तो पाश्चात्य जगत में या आज भी हम हमारे देश में भी जब हम देख रहे हैं तो अब सब कुछ को एजुकेशन है, तो अब संभव नहीं है कि अलग अलग करें, उनको घर में बिठा के शिक्षा दें और इसको गुरुकुल भेज दें. गुरुकुल ही नहीं है, टीचर्स नहीं है. तो फिर हालांकि प्रभुपाद को कई बार एक्यूजेशंस होते थे कि ये आप क्या कर रहे हैं, स्त्रियों को दीक्षा दे रहे हैं, स्त्रियों को ब्राह्मण दीक्षा दे रहे हैं, उनको डीटी वर्शिप करा रहे हैं, पर प्रभुपाद कहते हैं व्हाट कैन आई डू, देयर कल्चर इज लाइक दैट, दे सिट टुगेदर, दे डांस टुगेदर, दे डैली विद ईच अदर, व्हाट कैन आई डू. तो मैं उनको भक्ति ना करने दूं. तो भक्ति तो एक आत्मा का अधिकार है. तो प्रभुपाद हमेशा देखते थे आत्मा को, प्रभुपाद शरीर नहीं देखते थे. शुद्ध भक्त आत्मा देखती है और वो कितना फंसा हुआ है और कितना उसको उठाना है तो जानते हैं. तो प्रभुपाद ने इसीलिए अलग अलग जगह पे स्टैंडर्ड दिए. तो ये आचार्य ही समझ सकते हैं और जो भक्ति में परिपक्व हैं वो समझ सकते हैं. प्रभुपाद कहते थे इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन वेस्टर्न वर्ल्ड डू कीर्तन, फॉर इंडिया कंस्ट्रक्ट ह्यूज टेम्पल्स. तो आप देखिए भारत में बड़े बड़े मंदिर हैं, आज मंदिर बना दीजिए कहीं पे भी, छोटा सा ही मंदिर बना देंगे तो श्रद्धालु अपने आप आ जाएंगे, चाहे वो असली मंदिर हो चाहे नकली मंदिर हो. तो श्रद्धा है लोगों में आज भी, भले वो यहाँ बैठ के मुंह उनका ना चले, ताली बजता रहेगा. और वहीं वेस्टर्न वर्ल्ड में आप देखिए कीर्तन में एब्जॉर्ब, दे डोंट नो मोर डिटेल्स, डीटी वर्शिप कैसे करना है, प्रणाम कैसे करना है, ज़्यादा नहीं पता, बट म्यूजिक म्यूजिक से बहुत अट्रैक्ट. तो आज भी हमारा पैटर्न आप देखेंगे इस्कॉन का प्रीचिंग का, तो वेस्टर्न स्टाइल में आप देखिए जितने भी हमारे महाराज लोग बाहर प्रचार कर रहे हैं कीर्तन बहुत ज़्यादा करते हैं और फिर फिलोसॉफिकल लेक्चर्स. लेकिन यहाँ पे इतने सारे प्रोग्राम टेंपल में, बाहर भोगा प्लेट स्टॉल, गोदान और कितने सारे प्रोग्राम हैं, लोगों को जैसे तैसे जोड़ने के लिए, लोग आते हैं जुड़ते हैं. तो ये यहाँ पे अभी भी है भारत में, श्रद्धा है लोगों में. तो एज अ साधक हमको क्या करना है, इन्हीं का बस पालन करते जाना है और ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करना है जो हमें भगवान से दूर करें. हालांकि मुझे याद नहीं रहा कि महाराज ने 43 लिया है, तो मैं पिछले श्लोक पर प्रिपेयर करके आया था, तो आई एम सॉरी मैं कुछ चर्चा नहीं कर पाया मेन जो मैं अपना प्रिपेयर करके आया था. तो फिर भी हम यहीं रोकेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्ण. ग्रंथराज भगवद गीता की, किसी का कुछ टिप्पणी है या प्रश्न है तो पूछ सकते हैं. ज्यादातर हाँ, मैं कैसे आया, मैं इससे आया, एक भक्त ने हमें भगवद गीता दी थी और यही भगवद गीता पढ़ते पढ़ते यही प्रभुपाद का फोटो देखा था जो मैं अभी बता रहा था. तो मुझे पता नहीं था कि, क्योंकि बुक के लास्ट में दिया हुआ है ना लेखक परिचय, तो मुझे पता नहीं था प्रभुपाद है नहीं संसार में फिजिकली. तो मैं बुक पढ़ा और बुक पढ़ के राधा पारसार्थी मंदिर गया और वहाँ पे बुक शॉप में घुस के प्रभु जी से बोला इनसे दीक्षा लेनी है, महाराज कहाँ मिलेंगे. उसके बाद फिर प्रोग्राम से जुड़े और चल पड़े, तो हम ऐसे जुड़े. तो प्रभुपाद के ग्रंथों से जुड़े हैं, प्रभुपाद के मंदिर, प्रभुपाद के ग्रंथ और जो भी प्रभुपाद ने दिया है सब पूर्ण है. ओके, थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय.